लेकिन किसी की निराकारी स्टेज नहीं बनी है, निराकारी स्टेज नहीं बनी। विष्णु की निराकारी स्टेज होती है क्या? विष्णु साकारी दुनिया में होता है या निराकारी दुनिया में होता है? विष्णु की पार्टधारी जो आत्माएं होंगी वो दिव्य गुणों से भरी पूरी होंगी या आसुरी गुणों से भरी पूरी होंगी? गाली गलौज करने वाले गुणों से भरी पूरी होंगी, दिव्य गुणों से भरी पूरी होंगी? आकारी स्टेज वाली होंगी या निराकारी स्टेज वाली होंगी या साकारी स्टेज वाली होंगी? न निराकारी स्टेज वाली होंगी न आकारी स्टेज वाली होंगी। क्यों? आकारी स्टेज माना ज्ञान का मनन चिंतन करने वाली स्टेज। जो विष्णु देवता है वो तो दिव्य गुणों से भरा पूरा है, देवता है तो उस हिसाब से बुद्धू होते हैं, तो उनको ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने की क्या दरकार? वो तो स्टेज को पकड़ चुके, देवताई स्टेज को। तो लेकिन किसी की निराकारी स्टेज नहीं बनी है। पहले और दूसरे पार्ट द्वारा जो साकारी आकारी स्टेज तक पहुंचे हैं उनमें किसी की निराकारी स्टेज नहीं बनी है। यहां परमपिता परमात्मा इस तीसरे पार्ट द्वारा संपूर्ण पवित्रता के आधार पर निराकारी स्टेज बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। निराकारी स्टेज का बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा ने तो बोला है कि ये तुम बच्चों की ऐसी स्टेज बन जाएगी जिस स्टेज को सूरत को देखते ही लोगों को समझ में आ जाएगा ये कोई अलौकिक जन है। क्या? फरिश्तों को देखने से ही असर पड़ जाएगा, देखने से ही पता चलेगा चलेगा कि ये आकारी स्टेज है, निराकारी स्टेज है। वो उससे छुपती थोड़ी है, उस स्टेज के द्वारा ही परमात्मा प्रत्यक्ष होता है संसार में। तो परमात्मा एक होगा या अनेक होंगे? और अनेक ऐसी स्टेज वाले प्रत्यक्ष हो जाए तो सर्वव्यापी हो गया। आधार पर संपूर्ण पवित्रता के आधार पर निराकारी स्टेज बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो खुद भी तो निराकारी होंगे। बनाने वाले पुरुषार्थ कराने वाले कैसी स्टेज वाले होंगे? निराकारी स्टेज वाले। तो विष्णु निराकारी स्टेज वाला होता है ऐसी कहीं मुरली में बोला है? विष्णु विष्णु अब किस लिए पुरुषार्थ कर रहा है जब वो विष्णु बनने के बाद सती भी देवता बन गया फिर पुरुषार्थ गाएगा? हाँ, प्रारब्ध मिल गई। पहले पार्ट द्वारा परमपिता परमात्मा ने करणहार का पार्ट बजाया है ब्रह्मा द्वारा। क्या करणहार का पार्ट बजाया है? मना कर्म करके दादा लेखराज की तरफ इशारा है। पहले पार्ट द्वारा परमपिता परमात्मा ने करणहार का पार्ट बजाया है और दूसरे पार्ट द्वारा करावनहार का पार्ट बजाया है। क्या कराया? दूसरा पार्ट माना शंकर द्वारा करावनहार का पार्ट बजाया है। क्या कराया? क्या कराया? खुद किया या न किया लेकिन बच्चों से कराया। क्या कराया? अब 1969 से इस 96 लिखा है 96 से अब 1996 से इस तीसरे पार्ट द्वारा परमपिता परमात्मा करण करावन हार का पार्ट बजा रहे हैं। माने दोनों पार्ट बजा रहे हैं, करण का भी पार्ट बजा रहे हैं और करावन हार का भी पार्ट बजा रहे हैं। करके भी दिखा रहे हैं। क्या क्या करके है? हाँ, पैराडाइज बनाएंगे माने बिल्डिंग बना रहे हैं। इतने लोग आने लगे हैं जो इतनी जरूरत पड़ जाए आने लगे हैं, इतने लोग आने लगे हैं कि है, उनके मकान में नहीं समाते हैं। बाद में आएंगे तब की देखी जाएगी। अभी इतने लोग आ रहे हैं कि उनके मकान में न समाए। फिर तो जब जरूरत होती तभी तो बनाना चाहिए। फिर दूसरे मुरली में तो बाबा ने ये कहा कि तुम बच्चे माउंट आबू में तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं, ये तो विनाश में काम आवेंगे। क्या ये विनाश में काम आवेंगे? तुम बच्चों के काम आवेंगे, यहां से बैठ करके तुम विनाश को देखेंगे बैठे बैठे। बाकी जगह सेवा करने के लिए कहीं ये तो नहीं बताया कि प्रॉपर्टी बनाओ मकान बनाओ। हाँ इतना जरूर कहा है अगर कोई देते हैं बड़ा हाल बना के तो कुछ न कुछ उनकी भी सेवा हो जाती है, इसलिए बड़ा हाल कोई ऑफर करते हैं तो ले लेते हैं। क्या कहा? अगर कोई देते हैं, माने ये डायरेक्शन नहीं दिया कि अपने यज्ञ की धन संपत्ति से बड़ा हाल बनाओ या बड़ी बिल्डिंग बनाओ या कोई भी बिल्डिंग बनाओ, बल्कि इसके विरोधी डायरेक्शन और दिया मुरली में। तुम बच्चों को अभी प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। क्या डायरेक्शन दिया? तुम बच्चों को अभी प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, माना बेच तो सकते हैं लेकिन बनाए नहीं सकते। बिल्डिंग बनाना करना, खेत के लिए जमीन खरीदना, ये सब क्या है? ये तो प्रॉपर्टी बनाने वाली बात हो गई, ये तो है श्रीमत के बरखिलाफ काम। श्रीमत के बरखिलाफ काम करना तो दूर रहा, मुरली में बोला श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। माने जो बात भी करे कि मकान बनाओ माउंट आबू के अलावा दूसरी जगह, मकान बनाओ या शादी करो, अगर करण करावन हार दोनों का पाठ बजाए रहे, ऐसी स्पष्ट अनुभूति हमको हो रही है। ये निश्चय पत्र लिख करके दो, माना बिल्डिंग बनाने से स्पष्ट अनुभूति हो जाती है। क्या अगर दिल्ली में ये बिल्डिंग बनी है और इस बिल्डिंग को देख करके कोई ये कहे कि स्थापना हो रही है, राजधानी तैयार हो रही है, तो ये सही बात है क्या? है स्थूल बिल्डिंग कोई राजधानी तैयार करती है क्या? स्थूल बिल्डिंग या हाल बनाकर कोई देते हैं वो ईश्वरीय सेवा के लिए ले लेना वो तो एक अलग बात, लेकिन स्थूल बिल्डिंग कोई स्वर्ग स्थापन करेगी ऐसी बात नहीं है। बाबा का जो स्वर्ग होगा, स्वर्गीय संगठन होगा, उसमें स्थूल बिल्डिंग की बात होगी क्या? कि अवस्था ऐसी बनी हुई होगी, ऐसी स्टेज बनी हुई होगी उस संगठन की, संगठन रूपी किले की, जिसमें दुख दुख महसूस नहीं होगा, न हम दुख लेंगे और न किसी को दुख देंगे। ऐसी संगठन में हम ऐसी स्टेज अनुभूति करेंगे, वो है संगठन रूपी किला, पांडवों का किला, जिसमें कोई भिखारी प्रवेश कर नहीं सकेगा। यहाँ से कोई निकाला गया है? पांडवों को तो देश निकाला मिला था, उनको यहाँ से किसी ने निकाल दिया क्या? बाबा ने तो पांडवों कौरवों की ये परिभाषा बताई है, क्या जिनको देश निकाला मिला वो पांडव बने? पांडवों को देश निकाला मिला ना, देश निकाला मिलता है तो पांडव हुए। पांडव बैगर होते हैं, उनको कहा जाता है उनको सिर्फ एक भगवान का ही आधार होता है और कोई दुनियावी आधार नहीं होता है पांडवों को, तो ये बात तो साबित ही नहीं होती। पांडव कैसे साबित हो जाएंगे? उनको माउंट आबू से निकाला गया, दीदी दादी और बीके बहनों ने निकाल दिया क्या? उन्होंने भी नहीं निकाल दिया, हमेशा बुलाती रहती है। यहाँ मम्मी ने उनको निकाल दिया क्या? अब तक भी बुलाया, गालियां देने पर भी बुलाया। यहाँ यज्ञार्थ, आखिरी पॉइंट, यहाँ यज्ञार्थ ज्ञान और याद की शिक्षा दी जाती है। अच्छा यथार्थ, यहाँ यथार्थ ज्ञान और याद की शिक्षा दी जाती है। आत्मिक स्थिति में इच्छित होकर आदि सनातन देवी देवता, देवी देवताओं के दैवी गुणों और दैवी शक्तियों के संस्कार भर मनसा सेवा का पुरुषार्थ कराया जा रहा है। मनसा सेवा का पुरुषार्थ कराया जा रहा है क्या? दैवी गुणों और दैवी शक्तियों के संस्कार भरने का, मनसा का पुरुषार्थ, वाचा का नहीं कराया जा रहा है। मन वाचा से तुम भले गाली देते रहो क्या, वाचा से गाली देते रहो, कर्मणा से भले शराबरा पी लो, कभी कोई अर्ज नहीं है। क्यों? मन सा पुरुषार्थ कराया जा रहा है। हाँ, निराकारी स्टेज में तो कोई भी काम करोगे, याद में रह करके करोगे या शरीर होकर के करोगे तो यादगार बन जाएगी। हैं? हाँ, वाचा और कर्मणा, उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। वाचा कुछ भी बोला लेकिन सुनने वाले को वो रिजल्ट ये दे, चलो गाली भी दी लेकिन सुनने वाला अंदर से क्या महसूस करे कि हमको इस गाली ने भी हमारा क्या किया, कल्याण किया, सब कहेंगे वो बाचा याद की स्थिति में रहकर के बाचा चलाई गई। कभी कभी ऐसा होता है प्यार से थप्पड़ भी मारा जाता है और थप्पड़ खाने वाला खुश होता है, हंसता है। प्यार से कभी कभी मीठी गाली भी दी जाती है, शादियों आदियों गालियां खूब देते हैं, वो गालियां सुनकर के हंसते हैं या रोते हैं या दुखी होते हैं, हंसते हैं। तो कर्म तो वही है लेकिन अंदर से भाव क्या है, भाव दुखी करने का है क्या? नहीं, तारीख सही, नाम और पता।
मिट्टी में इस देह को ही मिट्टी कहा जाता है, माने जितने भी दूसरे धर्म हैं भारत को छोड़ करके, भारत की आदि सनातन देवी देवता धर्म की परंपरा को छोड़ करके, वो सब देहभान की मिट्टी में गढ़ते हैं, पूरा देहभान नहीं छोड़ पाते क्योंकि मिट्टी का संग समझते। एक भारत की परंपरा ऐसी है जिसमें योग आदमी में आत्मा को तपाया जाता है और देहभान सारा जल जाता है। जलने के बाद क्या बचता है? राख बचती है, हड्डियों की राख हो जाती है। उसे भी ले जाकर के नदी में या किसी तीर्थ में जाकर के अर्पण कर देते हैं। कहते जो फूल हैं, मतलब आत्मा जब योग आदमी में अपने सब पाप कर्मों को भस्म कर देती है तो दुखदायी कांटे से क्या हो जाती, चैतन्य फूल हो जाती। तो भारत की परंपरा में आज भी उसका दैन है, इस संसार कर्म क्रिया कर्म के रूप में मनाते आते हैं। शरीर छोड़ने के बाद, देह को जलाने के बाद चौथे रोज तक वो राख को ले जाकर के नदी में बहाते, माना जितने भी क्रिया कर्म कांड है जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक भारत की परंपरा। पढ़े लिखे लोग ये समझते हैं कि ये तो अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, क्योंकि सही अर्थ का पता नहीं है। वास्तव में जब भगवान इस सृष्टि पर आता है तो सच्चा कर्म कांड हमको करना सिखाता है। उन कर्म कांडों का भी रहस्य बताता है कि ये कर्म कांड असली रूप में किस समय की यादगार है। अभी माना कलयुग के अंत समय में, जबकि परमात्मा बाप आता है, कलयुगी तमो प्रधान दुखदायी मनुष्य शक्ति को सुखदायी सती में पलटने के लिए तो सारी दुनिया का नया संस्कार है। वहां के शरीर को जलाते हैं और यहां भगवान बाप आकर के देह अभिमान को जलाते हैं। आत्म की स्थिति में स्थित होना सिखाते हैं। ये आत्मभान में स्थित होना, यही बात करनी दे अभिमान के जलाने, आत्मा की भी याद और साथ में परमात्मा के स्वरूप की भी याद। ये आत्मा का स्वरूप प्रज्वलित करना और परमात्मा बाप से उसका मेल कराना, इसी में सात समस्याओं का समाधान छिपा हुआ। पांच विकार आते ही हैं देह अभिमान, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही दुख के मूल है। ये देह अभिमान में समाये हुए हैं, इनको नष्ट करने का मूल मंत्र परमात्मा बाप आकर के बताते हैं कि अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो और बिंदु बिंदु आत्माओं का जो बाप ज्योति बिंदु शिव है, जिसका बड़ा रूप शिवलिंग बनाया हुआ है, उस ज्योतिर्लिंग को याद करो। बिंदु या टीका प्रकृति के मध्य में लगाने की बात नहीं है, जैसे गीता ने बताया इस श्लोक में, मनुष्य जब अंतिम समय में प्राण छोड़ता है उस समय उसे क्या करना चाहिए, भ्रवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, प्रकृति के मध्य में प्राणों को सम्यक रूप से ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जहां जिसका वास है, जो जिसका घर है, वो वहां जल्दी मिलेगा। तो ये प्रैक्टिस बड़ी सहज है, शरीर छोड़ते समय ये प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, पहले से ही करनी पड़ेगी। ये मन को एकाग्र करने की विधि, क्योंकि मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो ये नहीं कहते कि मन बुद्धि यहां रह गई और आत्मा चली गई, नहीं, सारी कर्मेंद्रियां मौजूद है शरीर में ही है, लेकिन क्या चला गया, कौन सी शक्ति निकल गई, मन बुद्धि जिसमें संसार समाये हुए हैं इस जन्म के अच्छे और बुरे, वो मन बुद्धि रूपी आत्मा चली गई, वो आंखों की ज्योति जो प्रकृति के मध्य में रहती है वो निकल गई, आंखें बटन जैसी हो जाती, जैसे उनमें कोई रोशनी रही, वो रोशनी निकल गई, वो रोशनी ही मन बुद्धि रूपी आत्मा है। उसी का कॉन्सेंट्रेशन का अभ्यास हमको पहले से करना पड़ेगा। जिनको ये अभ्यास पहले से पक्का हो जाता है, आने वाली जो दुनिया है मारामारी की, अभी भी टेंशन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ये टेंशन अपने को अटेंशन रखने के लिए परमात्मा बाप हमको ये आकर के तरीका बताते हैं कि आप इसी स्थिति में स्थित होकर के रहें, इससे अखंड शांति मिलेगी, अखंड विश्वास पैदा होगा, विल पावर आएगी, स्थितियों परिस्थितियों समस्याओं से मुकाबला करने की ताकत आएगी। इतनी शक्ति पैदा होती है आप कॉन्सेंट्रेशन से कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और एक आत्मा जो आत्म स्थिति में स्थित है, जिसका गीता में गायन है, स्वरूप वनिष्ठ है, वो एक तरफ हो जाए तो सारी दुनिया का मुकाबला करने की विल पावर उसमें पैदा हो सकती है। लेकिन कैसे, अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान ये मन तो कंट्रोल में नहीं आता, ये मन ایسا گھوڑا ہے جس کو لگام میں نینترت نہیں کیا جا سکتا. بھگوان نے کہا اس کے دو طریقے ہیں, ابھیاس ان کو پہنتے یا ویراگیہ جگریے سے. بار بار آپ نے کسی چیز کا ابھیاس کرو. انیک جنم لیے ہیں, انیک آتماؤں کا سنگ کیا ہے, انیک پرکار کے ان کے ساتھ سنگ کیے ہیں, رنگ میں رنگے ہیں, تو وہ باتیں من کے اندر یاد تو آئیں گی. بھانتی بھانتی کے پرش, بھانتی بھانتی کے وایو منڈل, بھانتی بھانتی کی سین سینریز سپنے میں بھی آئیں گی, سنکلپ میں بھی آئیں گی. لیکن کیا کرنا ہے, ان سب سے بدھیوں کو ہٹا کر کے آتم کی ستھی میں استھت ہو جانا. میں جیوتی بندو ستارہ آتما ہوں, پرماتما باپ کا بچہ ہوں. بار بار ابھیاس کرنے سے انت میں یہ من روپی آتما استھت ہو جائے گی. اور من بدھی جب ایکاگر ہو جاتی ہے تو پرماتما کے سوروپ کو جلدی پہچان سکتی ہے. دوسرا طریقہ ویراگیہ سے گئے تھے, جب تک اس دیہ اور دیہ کے سمبندھیوں کی دنیا سے پورا ویراگ نہیں آیا تب تک آتما استھر بھاؤ کو پراپت نہیں کر سکتی. اور یہ بات شکتی رام شرما کے اندر سبھی نے انوبھو کی. اس شریر چھوڑنے سے کچھ دن پہلے سے ہی وہ یہ کہتے رہے کہ اب ہماری بدھی کہیں نہیں جا رہی ہے, میں اور میرا پرم پتا پرماتما سے کسی میں کوئی آ سکتی نہیں. تو ایسی آتما جب شریر چھوڑے گی تو انت متے تو گتے ہوگی یا نہیں ہوگی, ضرور ہوگی. انت متے متے من بدھی, انت سمے میں بدھی جہاں پہنچتی ہے وہیں اس کی گتی ہو جاتی ہے. من جہاں کہیں بھی اس شکتی پر کلیوگ کے انت میں جبکہ ایٹمک انرجی تیار ہو چکی ہے اس شکتی کو خلاص کرنے کے لیے اور نئی شکتی بنانے کے لیے پرماتما باپ اس شکتی پر آ چکا ہے, اس پرماتما باپ کے پاس وہ بھولی آتما اوشیہ پہنچے. کیونکہ انت متے سو گتی, کسی بھی دیہ دھاری میں کوئی لگاؤ ہے ہی نہیں تو آتما کی گتی کہاں ہوگی. جہاں لگاؤ ہوگا, جہاں اٹیچمنٹ ہوگا وہیں جائے گی نا, اور جہاں جائے گی جس کے پاس جائے گی اسی کے کاری میں صحیح ہوگی. شریر کا کرم بھوگ وہ تو ہر ایک کو بھوگنا پڑتا ہے, کڑے سے کڑا کرم بندھن بھوگنا پڑے کیونکہ انیک جنم لیے, ان کا حساب کتاب کس کو کرنا ہی پڑتا ہے. حساب کتاب کسی ہونے کے بعد ایسے نہیں کہ اس جنم کی بیماریاں پھر اگلے جنم میں جاتی ہی جاتی ہیں. اگر وہ وکرم بھتم ہو گیا تو وہ حساب کتاب بھی بھتم ہو گیا. آتما کو شریر بھی ایسا ملنا ہے جس سوستھ شریر سے سوستھ روپ میں ہو کر کے وہ پرشارتھ کر سکے. پروش ارتھ منا پروشارتھ پوریم سیتے پوری مانا نگری اور سیتے مانا چین کرنے والی. یہ شریر ہی پوری ہے اور اس میں آتما وشرام کرنے والی ہے, سکھ شانتی میں وشرام کرے وہی زندگی ہے. اگر آتما اس شریر میں رہتے دکھ اور آشانتی بھوگتی ہے تو اسے وشرام کرنا نہیں کہا جائے. ابھی پرماتما باپ وہی دنیا بنانے کے لیے آیا ہوا ہے, سچی وہ تریتا کی رام کرشن کی وہ دنیا جس میں سکھ ہوگا دکھ نہیں ہوگا. लेकिन उसके लिए अंत मते सो गते वो प्रैक्टिस अभी करनी पड़े। हम अपनी मेंटेलिटी को ऐसा बना लें कि कोई हमको कैसी भी बात सुनाए हम डिस्टर्ब न हो। जो गीता में बताया है यस्मान लोद्विजते लोको लोकान लोद्विजते च यः उद्देश्य को प्राप्त न हो, माने जिससे कोई उद्योग को प्राप्त न हो, अशांति को प्राप्त न हो, और जो किसी को अशांति प्राप्त न कराए वो ही स्वरूप निष्ठ। अशांति को प्राप्त कराएगा तो खुद भी अशांति पाएगा, दूसरों को सुख शांति का देने का निमित्त बनेगा तो खुद भी सुख शांति में रमण करेगा। तो ऐसा ही स्थिति कैसे बनाई जाए वो आत्म की स्थिति ही एक उपाय है, उसका अभ्यास करना। जिस उपाय को प्राप्त करने से आत्मा की ऐसी स्थिति बन जाएगी कि जैसे कोई हमारे विरोध में बोल रहा है और हम सुनते हुए न सुने, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, तो जैसे कि किसी ने हमको दुख देना चाहा लेकिन हमने उसके दुख देने को ग्रहण नहीं किया। कोई हमको गरम गरम आंखों से देखता है, हमने उसके भाव को परख लिया, ये क्यों देखता है, ये सूर्य का कौन सा हिस्सा हमारा हिसाब किताब है जो ये हमसे ले रहा है, तो प्रतिफल में हम अपनी आंख गर्म नहीं करेंगे, हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, उसका भी हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। ऐसा भाव रखना पड़े, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और अब तो वो स्टेज होनी चाहिए कि बुरा मत सोचो, हर आत्मा के प्रति शुभ संकल्प करना है। क्योंकि मन के अंदर पहले बात आती है, फिर वाचा में आती है, फिर कर्मणा में आती है। मनसा का कोई विकर्म नहीं बनता, पाप कर्म नहीं बनता, लेकिन वाचा में और कर्मेंद्रियों में अगर कोई बात ऐसी आ जाती है जिससे दूसरे को सुख होता है तो उसे पाप बन जाता है। उससे बचे रहने के लिए सिर्फ एक ही सबसे बड़ा उपाय है, साठ पचास्ता निसंकल्प लीजिए, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं आत्मा स्टार, जिस स्टार की रोशनी इन आंखों से निकल रही है, इस स्थिति निश्चित हो जाए। इतना भी अच्छे से अच्छा हम सोचे लेकिन अगर हमारे पूर्व जन्म के हिसाब किताब खराब होंगे तो अच्छे से अच्छा सोचने के बावजूद भी हमको प्रतिफल में श्रेष्ठता नहीं है, जब तक पूर्वजन्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता। कितना भी हम बुरे से बुरा सोचें लेकिन जिसका हम कल्याण चाहते हैं अगर उसका पुण्य कर्म है तो हमारे कितना भी सोचने के बावजूद भी उसका कल्याण नहीं होगा। मतलब सिर्फ हमारे करने के ऊपर नहीं है, इसलिए बोला जाता है बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना। कोई आदमी जीवन भर किसी का कल्याण चाहता है और वो व्यक्ति प्रतिफल में उसको उल्टा ही बोलता है सारा जीवन, इसको पूर्व जन्म का हिसाब किताब न कहा जाए तो क्या कहा जाए। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए, हर अति का अंत हो जाता है, कोई भी प्रकार की अति हो वो अति निशानी है अंत होने की। अभी मेंटल टेंशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, अथाह धन संपत्ति कमा के रखी हुई है, स्वास्थ्य के लिए ढेर सारी दवाइयां रखी हुई हैं, बड़े लंबे चौड़े परिवार हैं, संबंध है, संबंध तो होते ही हैं सुख लेने के लिए सुख देने के लिए, और संबंध से मिलने वाले सुखों से आदमी का विश्वास उठता जाता है। اس کا رزلٹ ہے چھوٹے چھوٹے کٹمب ہوتے جاتے. پہلے ایسا نہیں تھا, بڑے بڑے پریوار ہوتے تھے, ایک ایک پریوار میں سو سو ویکتی پلتا تھا, ایک چولہے پر روٹی بنتی تھی. ابھی بھی ایسے پریوار ہیں پرائے لوگ, جیسے گیتا نے کہا ہے یہ دیوی دیوتا سناتن دھرم پرائے لوک ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل لوک ہو جاتا ہے. ابھی بھی کہیں نہ کہیں بھارت ورش میں ایسے ایسے پریوار ہیں برلے, ایک مکھیا, انیک بیٹے بیٹیاں, پتر پرپوتر, ان کی بہویں, اور مزال ہے کہ کوئی اس مکھیا کے ور خلاف چل جائے. ایک دھرم, ایک بھاشا, ایک مت, ایک کل, کسی پرکار کا کوئی بھی وچار نہیں ہو سکتا. ایک دوسرے کے پرتی ناجائز کسی میں کوئی لگاؤ نہیں ہو سکتا. اسی سے تو شانتی لگی پڑی, پیوریٹی سے ہی یونٹی بنتی, اور پیوریٹی کب آتی ہے؟ پیوریٹی آتی ہے کانسنٹریشن سے. دنیا میں بڑے بڑے تن بل والے بھلے بیٹھے ہوئے, جن کا تن بہت سخت ہے, پہلوان سے پہلوان ہے, تن بل ہے, بڑے بڑے دھن والے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے پونجی پتی ہیں, ملٹی ملین آئر ہیں. دھن بل کی اتی جیسے لگی پڑی, اور جن بل, بڑے بڑے ان کے پریوار ہیں, بڑے بڑے سمبندھی ہیں اونچے سے اونچے عہدوں پر, ڈھیر سارے ہجوم ان کو ماننے والے ہیں. مانا جن بل بھی بہت وستار میں پھیلا ہوا ہے. تن بل بھی ہے, دھن بل بھی ہے, جن بل بھی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بہت دکھی. آسان کیوں؟ کیونکہ من بل جو سب سے بڑی چیز ہے, آتم شکتی, وہ کیوں ہو چکی. آج آدمی بینک میں پیسہ اکٹھا کر رہا ہے, اس کا ڈھیر بنا رہا ہے, ایکتر کر رہا ہے, تن بل ایکتر کر رہا ہے اور جن بل بنا رہا ہے, لیکن منوبل کے لیے کوئی پریاس نہیں کرتا. منوبل کی کیا حالت ہے؟ صبح سے لے کر کے شام تک من چاروں طرف بھٹکتا رہے گا. تو جب چاروں طرف من بھٹکتا رہے گا صبح سے شام تک, اور رات میں سوتے سمے بھی سپنے میں بدھی من چاروں طرف بھٹکتا ہے, تو چوبیس گھنٹے جب من بدھی کا بکھراؤ ہوگا تو رد کیا آئے گا؟ منوبل کیوں ہوگا, آتمک بل کیوں ہوگا, ول پاور گھٹے گی یا بڑھے گی؟ گھٹے گی. اگر ول پاور گھٹ گئی تو کتنا بھی تن بل ہو, کتنا بھی دھن بل ہو, کتنا بھی دھن بل ہو, ساتھ دے گا. کسی کے پاس منوبل ہے, بابر کے پاس منوبل تھا, وکٹوریا کے وزیر کے پاس منوبل تھا, تو مہارانی وکٹوریا کا وزیر بن بیٹھا. بابر سپاہی سے بڑھ کر کے کیا بن بیٹھا؟ بھارت کا سمراٹ بن بیٹھا. تو من کی پاور اگر ایکتر کی تو سب کچھ ایکتر کیا, اور من کی پاور چھین کر لی تو کتنا بھی ہم ٹائم لگا دیں تن بل دھن بل جن بل اکٹھا کرنے میں, سات ویرتھ ہو جاتا. انت میں یہ ریزلٹ نکلتا ہے کہ ہارٹ فیل ہو گیا. جو یوگی ہوتے ہیں, جو سوروپ نشٹھ ہوتے ہیں, آتم کی استھتی میں استھت رہنے کا پریاس کرتے ہیں, ان کا کبھی ہارٹ فیل نہیں ہو سکتا. ان کا ہارٹ بہت مضبوط بن جاتا ہے, کیونکہ سواس پرشواس کی پرکریا بہت دھیمی ہو جاتی ہے کانسنٹریشن سے. सोच भी होंगे, क्योंकि पिछले 50-60 वर्षों में ये अफ्रीकी नदी ईजाद हुई, उससे पहले ईजाद नहीं हुई। नई दुनिया बनाने वाला इस धरती पर आ जाता है तो पुरानी दुनिया का ध्वंस करने का सामान बनाने वाले भी तैयार हो जाते हैं। ये स्थापना और ये विनाश, ये दोनों साथ साथ चलते। नए संगठन का ऐसा संगठन जिसमें धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक हाथ में है, एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक मत एक कुल, तो सुख शांति होगी या दुख शांति होगी, जरूर सुख शांति की दुनिया बनेगी। अभी भारत में क्या हाल है? भारत में छोटे से देश में जितनी भाषाएं पनप रही हैं और उन भाषाओं को लेकर के जितना झगड़ा फैला हुआ है उतना किसी देश में नहीं फैला हुआ है। राज्यवाद, छोटे से देश में जितना राज्यवाद को लेकर के झगड़ा चल रहा है उतना किसी देश में नहीं। धर्म, ये भारत देश ही है जिसमें दुनिया के सब धर्म होते पड़े। ये तो भारत की राजधानी दिल्ली ही एक ऐसा शहर है दुनिया के अंदर जिसमें ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में हर धर्म की आत्माएं घुसी पड़ी, अपना अपना वर्चस्व जमाए बैठती है। तो धर्म के आधार पर अशांति फैलेगी या शांति फैलेगी, सब अपनी अपनी धारणाएं स्थापन करना चाहते हैं। धर्म माना धारणा, अब वो धारणा कितनी सत्य है कितनी असत्य है ये तो परमात्मा ही जब इस शक्ति पर प्रत्यक्ष हो तब पता चलेगा कि वो ऊंचे से ऊंचा बाप कौन है जिसको सारी शक्ति नमन करती है सारी शक्ति मानती है। आज में तो जरूर कोई ऐसा आदि मानव रहा होगा जो हर धर्म में माना जाता है, वो जरूरी है कि ये होना चाहिए। मुसलमानों में उसको आदम और हवा कहते हैं, अंग्रेजों में उस आदि मानव को एडम और ईव कहते हैं, जैनियों में उसको आदिनाथ और आदिनाथिनी कहते हैं, और भारत में तुम आदि देव है पुरुष है पुराण है, आदि देव शंकर के रूप में माना जाता है। शंकर और पार्वती उस शक्ति के आदि पुरुष हैं, जो आदि है वो ही अंत कराने वाला है। आदि तो अंत है, क्या बोला जाता है यादगार में? हर हर बम बम, दोनों कार्य करता है। नई शक्ति आदि करने के लिए पापों का हरण कर लेता है, आत्म की स्थिति का अभ्यास सिखाता है, और बमों का विस्फोट करा के कार्य शक्ति का संहार कर लेता है। क्योंकि दुनिया सुधरने वाली नहीं है, नई शक्ति में थोड़े लोग होंगे और आज इस पुरानी शक्ति में ढेर लोग हैं। एक एक बूंद से कहते हैं सागर भर जाता है, तो मुट्ठी भर आत्माएं जो उस देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन डालने वाली है, हर धर्म में वो आत्माएं मानी जाती हैं माला के रूप में। सब धर्म में माला जपी जाती है, माला के मण के माने आत्माओं की यादगार। वो आत्मा रूपी मण के हर धर्म में स्मरण किए जाते हैं। क्यों स्मरण किए जाते हैं? जरूर उन आत्मा रूपी मण को ने करके ऐसा संगठन संसार में तैयार किया है जो संगठन सारे विश्व को मान्य हो गया, चाहे किसी भी धर्म के लोगों के सूत्र में ज्ञान के सूत्र में वो सब मन के बंध हुए। अभी ये कार्य चल रहा है। आत्माएं ज्ञान के आधार पर
उस निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा जो इस सृष्टि पर साकार आकर के बनता है, गीता ज्ञान सुनाता है, उसको पहचाना जाता है। अभी भी टाइम बहुत थोड़ा है, लास्ट चांस। अभी राजनीति में दम नहीं रही है, राजनीति एकदम अस्थिर हो चुकी। धर्मगुरुओं में लोगों की आस्था उठ चुकी है, लेकिन हर मनुष्य आत्मा को जन्म से ही करके एक दात मिलती है ईश्वर से। कौन सी दात? वरदान कहो, दात कहो, प्राप्ति कहो, वो प्राप्ति है बुद्धि। हर मनुष्य आत्मा को अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है फैसला करने के लिए। राइट क्या है, रंग क्या है। जो परमात्मा बाप से हमें जन्म से ही चीज मिली हुई है, उसकी कदर हमको पहले करनी चाहिए। हमको कोई बात ग्रहण करने से पहले अपनी बुद्धि से फैसला करना है। समाज किस तरफ जा रहा है, राज्य किस तरफ जा रहा है, राजनीति किस तरफ जा रही है, ये नहीं देखना है। अपनी बुद्धि से फैसला करके फिर निर्णय लेना है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सुंदे सुंदे मते भिन्ना, अनेक मत हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक राज्य हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक मत मतांतर। उन सब के बीच में हमको फैसला करना है, राइट क्या है। एक बात निश्चित है कि परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आएगा तो सारी सृष्टि को संदेश जरूर पहुंचता है। इस बात का कि वो इस सृष्टि को सुधारने वाला इस सृष्टि पर आ चुका, अब अंतिम समय है। इस दुनिया का रिफॉर्मेशन करने की और किसी में ताकत नहीं, सब थक चुके हैं। इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, विवेकानंद आए, रामकृष्ण आए, गांधी जी आए, और सब इस सृष्टि के गाल में, काल के गाल में समा गए। दुनिया नीचे ही गिरती चली गई। आपसी स्नेह, सहयोग, सौहार्द सब खलास होता चला गया। अब बाप आया हुआ है आत्मा आत्मा भाई भाई बनाने के लिए। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, है तो सब आत्मा। रूह तो सबके अंदर है, सबके अंदर है। रूहों में संसार अलग 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 भरे हुए हैं, लेकिन है रूह है सब सुप्रीम रूह की संतान। तो गाते तो है मनुष्य, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो जब आप सब आपस में भाई भाई होंगे तो जरूर कोई एक बाप भी इस सृष्टि पर रहा होगा ना। उस बाप का यादगार ही हर धर्म में माना जाता है, एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ के रूप में। वो रूप धारण करके परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, जिसकी सबसे जास्ती मूर्तियां सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी, ग्रीस में, मेसोपोटामिया में, सिंध घाटी में वो ढेर की ढेर मूर्तियां, नग्न मूर्तियां मिली। उनको जैनी लोग तीर्थंकर कहते हैं और भारत में उसको शंकर कहते हैं। वो नग्न मूर्ति इस बात की यादगार है कि देहभान की उसको स्मृति नहीं है, आत्मिक स्मृति में स्थित है। देह रूपी वस्त्र जैसे याद ही नहीं है, इसलिए वस्त्र पहने हुए उनको नहीं दिखाया जाता। देहभान से ही सारे सुख पैदा होते हैं। तो अभी वो परिक्रिया सिखाने के लिए स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर उतरा हुआ है। थोड़ा प्रयत्न करने से, चाहे अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, धनी हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति, परमात्मा के दरबार में समझने के लिए सबको बराबर दात मिली हुई है, सब समझ सकते हैं। वो ईश्वर का ज्ञान किसी एक को पल्ले पड़े दूसरे को पल्ले नहीं पड़े ऐसी बात नहीं है। अंत समय में जब लास्ट एटमिक विस्फोट होंगे उस समय तक तो सारी दुनिया मान जाएगी, लेकिन पहले से जो पुरुषार्थ करते हैं उनके ऊपर परमात्मा की मेहर विशेष होती है, और वो बच्चे, वो आत्मिक रूप में स्थित होने वाले बच्चे, वो आने वाली रामकृष्ण की दुनिया में सुख भोगते हैं, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। वो स्वर्ग कोई ऊपर नहीं होता किसी लोक में, इसी शक्ति पर इसी भारत में स्वर्ग था, स्वयं भगवान बाप ने आकर के उस नरक को स्वर्ग बनाया था। राम राज्य का कितना दायन है, वो राम राज्य की स्थापना परमात्मा बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु ही आकर के करते। आज की दुनिया में है रावण राज्य, रावण को 10 सिर दिखाए जाते हैं, मन अनेक मत मतांतर है इस दुनिया में। अब वो अनेक मत मतांतर की दुनिया, 10 सिरों वाली रावण राज्य की दुनिया खलास होने वाली है, और एक राम का राज्य स्थापन होने वाला है। इस सृष्टि पर राम की भी आत्मा मौजूद है, कृष्ण की भी आत्मा मौजूद है, लेकिन किसी मनुष्य रूप में है। जैसा गीता में कहा गया, मुझे साधारण रूप में आए हुए वो मूलमति पहचान नहीं पाते। सिर्फ राम कृष्ण की ही आत्मा है नहीं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जितने भी बड़े बड़े हुए हैं धर्म पिता है, वो सब इस सृष्टि पर मौजूद है, लेकिन साधारण चोले में। वो महान महान हस्तियां जब परमात्मा को पहचानेंगी तो सब परमात्मा की सहयोगी बन जाएंगे, और अपना अपना वर्षा सुख और शांति का परमात्मा बाप से प्राप्त करेंगे। ओम।